नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश। तो एनी क्वेश्चन, सवाल, शंका, समाधान, सब्जेक्ट, विषय, स्वभौतिक आसक्ति कम करो और बच्चों के प्रति ड्यूटी भी अदा करो। तो भौतिक आसक्ति, हम आत्मा है और आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक है, शरीर के संबंध में जो कुछ है वो भी भौतिक है और जो जगत हमें दिखाई दे रहा है वो भी भौतिक है। भौतिक अर्थात भूत, पांच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये भूत हैं और ये पांच तत्वों का हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का। तो ये शरीर को हम स्थूल शरीर कहते हैं, स्थूल देह। और दूसरा हमारा देह है सूक्ष्म देह, सटल बॉडी, सूक्ष्म देह। तो वो भी भौतिक देह है। वो किसका बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। और हमारा आध्यात्मिक शरीर भी है, आत्मा, उसको कारण देह बोलते हैं। वो बना है सत चित आनंद, सचिदानंद, सनातन, संपूर्ण ज्ञानमय और संपूर्ण आनंद। ये हमारा दिव्य आध्यात्मिक देह है जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा। तो हम ये आत्मा हैं और ये आत्मा जब भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करता है कि मैं भौतिक शरीर हूं, तो वहां से दुख शुरू होते हैं। आत्मा संपूर्ण आनंद है, आनंदमय अभ्यासात। आत्मा आनंदमय है और भौतिक तत्व निरानंद है, जड़, जड़ तत्व निरानंद। तो ये भौतिक शरीर ये दुखों का घर है। क्यों? क्यों निरानंद है? क्यों? कि ये श्री कृष्ण से अलग बिखड़ा हुआ है। जब तक तार पावर हाउस से संबंधित है तो तार ये इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत शक्ति। जैसे तार पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो गया, पावर हाउस से वो टूटा या संबंध छोड़ दिया, तो वो विद्युत नहीं रहेगा। उसी तरह ये शरीर दुखों का घर है और ये आत्मा शरीर के साथ संलग्न रहता है, अटैच, आसक्त रहता है। इसलिए शरीर का दुख आत्मा को लगता है। आत्मा को दुख नहीं है, ये संपूर्ण आनंद है, आनंदमय अभ्यासात है, सच्चिदानंद है, दिव्य है, अलौकिक है आत्मा। लेकिन ये शरीर के साथ आत्मा संलग्न संबंध आइडेंटिफाई करता है, मैं ये शरीर हूं, ऐसा पहचान, ऐसी पहचान करता है, मैं शरीर हूं। इसलिए शरीर का दुख सारा आत्मा को। तो हर आत्मा, एक एक आत्मा हमेशा हर पल सुख आनंद की खोज में रहता है, आनंद की खोज में। मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, हर आत्मा। क्यों? कि उनका ये अभ्यास है, आनंदमय अभ्यासात, आनंद का ये स्वभाव है। इसलिए वो आनंद, जिसका जो स्वभाव होगा वो ढूंढेगा। जैसे शराबी है तो दूसरा शराबी ढूंढेगा, शराब खाना ढूंढेगा, उनको मंदिर मस्जिद नहीं दिखाई देगा, स्वभाव है। तो इसी तरह आत्मा का स्वभाव है आनंद मय अभ्यासात। वेदांत सूत्र दूसरा श्लोक पहले अध्याय का, आनंदमय अभ्यासात। आनंद हमारा हमारा स्वभाव है आनंद, और हमें आनंद नहीं मिल रहा है उसको आनंद हम ढूंढेंगे, कहाँ है आनंद, कहाँ है आनंद, वेर इज आनंद, वेर इज आनंद। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आनंद चाहिए तो निरानंद में नहीं मिलेगा, भौतिक चीजों में आनंद नहीं है, वो जड़ है, वहां से वो दुखों का घर है, और वहां आप आनंद ढूंढोगे नहीं मिलेगा। तो हमें भौतिक आसक्ति क्यों छोड़ना शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, गुरु कहते हैं, क्योंकि हमें आनंद की खोज है, और हम आनंद खोजते हैं भौतिक चीजों में जहां आनंद नहीं है। मृग मरीची जिनको हम झांझवा का नीर या मृग मरीची बोलते हैं, समझते हो मृग मरीची, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, तो लगता है मृग को लगता है कि इतना मैं जाऊंगा आगे तो वहां मुझे पानी मिल जाएगा, और जब वो वहां जाता है तो इतना ही दूर वो पानी दिखाई देता है, वहां पानी नहीं है, और पानी की खोज में भागता रहता है आगे आगे आगे, और बाद में पानी के बिना मर जाता है। तो इसी तरह ये आत्मा आनंदमय अभ्यास उनका है, और इसलिए वो आत्मा आनंद की हर पल खोज करता रहता है, लेकिन गलत जगह पर, भौतिक चीजों में जहां आनंद नहीं है। आनंद है अपने आप में, लेकिन वहां नहीं ढूंढता, जैसे कि मृग के नाभि में कस्तूरी की सुंदर सुवास आती है, तो वो मृग वो सुवास की खोज करता है, और वो खोज करने के लिए भागता है, यहाँ से आ रही वहां, लेकिन आ रही उनकी नाभि से, लेकिन वो सोचता है वहां से आ रही, वहां से आ रही, वहां भागता है, वहां भागता है। तो आत्मा आनंदमय है, लेकिन खोज आनंद की खोज कहाँ करता है, अपनी नाभि में नहीं, भागता दौड़ ये इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो हम मृग की तरह कस्तूरी की सुगंध, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, भाग दौड़ सुख के पीछे। तो ये निरानंद जड़ पदार्थों में सुख नहीं मिलेगा, और वहां ही हम सुख की भाग दौड़ कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा। इसलिए शास्त्र साधु गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भौतिक आसक्ति छोड़ो, भौतिक आसक्ति छोड़ो, और कृष्ण से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, तभी आपका काम हो सकता है, कृष्ण से जोड़ो। तो अभी आई बात बच्चों की, तो बच्चे ये धर्म है, हमें हमारा धर्म बजाना चाहिए, शुरुआत में धर्म ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति करनी है, भक्ति निरपेक्ष है, भक्ति को धर्म अर्थ और ज्ञान की अपेक्षा जरूरत नहीं है, भक्ति शुद्ध भक्ति निरपेक्ष है, इन चीजों की अपेक्षा नहीं रखती, शुद्ध भक्ति अपने आप में सक्षम है आपका कल्याण करने, और शुद्ध भक्ति ही करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति ही करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में शुद्ध भक्ति नहीं होगी क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। तो शुरुआत में हमें क्या करना पड़ेगा, धर्म ज्ञान और वैराग्य सहित साथ में भक्ति, धर्म बजाना होगा, धर्म नहीं बजाओगे तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैदिक भक्ति साधन, वैदिक भक्ति ये धर्म है, हमारा धर्म बजाना। शुद्ध भक्त को कोई ऑब्लिगेशन, उनको किसी का ऋण नहीं रहता, शुद्ध भक्त को देवात्मा भूतात्मा निर्णाम नायम ऋणी च राजम सर्वात्मा य शरणम गतव्यम गतो मुकुंदम परिहूर्त कर्तुम देवर्षि भूतात्म निर्णाम पितृणाम। ये सबका ऋण है हमारे ऊपर, देवों का, ऋषियों का, देवर्षि भूता भूतों का। बैल हमारे लिए खेती पकाता है, गाय हमारे लिए दूध देती है, तो देवर्षि भूतात् मनुराम, मनुष्यों का हमारे पर ऋण है। कोई ब्रेड बनाता है, कोई हमारे लिए कपड़े बनाता है, ऋण। देवर्षि भूतात्म निणाम पितृणाम, पितरों का ऋण। हमारे मम्मी ने, पिता ने हमें पाला पोसा नहीं होता गोदी में तो हमारा क्या होता, इसलिए उन माता पिता का ऋण। हस्बैंड भरण पोषण करता है, उनका ऋण। पत्नी खाना पकाती है, घर की देखभाल करती है, पत्नी का ऋण। देवर्षि भूतात्म निणाम पितृणाम, नायम ऋणी च राजण, राजा का भाई ऋण, राजा का ऋण अदा करते कर देने से, टैक्स देने के। नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मा यह शरणम गतव्यम, सर्वात्मा श्री कृष्ण के शरण में 100% कोई जाता है तो उनको इन सब का ऋण नहीं रहता। लेकिन जब तक 100% आप शरणागति, भगवान के शरणागत नहीं हो सत प्रतिशत, तब तक आपको ये सबका ऋण रहता है। सर्वात्मा शरणम गतव्यम गतो मुकुंदम परिहूर्त कर तुम, मुकुंद कस जिसने 100% सत प्रतिशत, जिन्होंने शरणागति नहीं ली तो ये ऋण अदा करना पड़ेगा। तो बच्चों का ऋण, बच्चों को हमने, हमें पैदा किया बच्चों को, तो बच्चों की और हमारी फर्ज बनती है, तो वो अदा करनी पड़ेगी। तो धर्म के सहित भक्ति, ऐसा नहीं कि भाई छाड़या बंधु छाड़या छाड़या सगा सोई मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन मीरा बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर धर्म आपको बजाना नहीं। गोपियों की तरह, गोपियों ने कोई धर्म बजाया नहीं, पति धर्म, पुत्र धर्म, ससुर धर्म, कोई भी धर्म, सब धर्म फेंक दिए। और भगवान भी कहे सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन माम एकम, अगर इनका अकेले का शरण आप लो तब, लेकिन पैसों का शरण, पत्नी का शरण, पुत्र का शरण, पिता का शरण और कृष्ण का साथ में, ये नहीं। तो जब तक श्री कृष्ण की सत प्रतिशत शरणागति नहीं ली, तब तक आपको धर्म बजाना ही चाहिए पड़ेगा। गोपियों ने नहीं किया, क्यों? शायद भगवान ने आंख के इशारा किया और गोपियां नाची, जैसे भी इशारा किया वैसे नाची, जैसे भी इशारा किया वैसे कर दिया, किसी का सोचा नहीं। तो गोपियों की जैसी शरणागति हो, मीरा की जैसी शरणागति हो, तो फिर बच्चों का ऋण, पत्नी का ऋण, पति का ऋण, पितरों का, राजा का, किसी का, कोई धर्म बजाने की जरूरत। माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम व्रज। लेकिन जब तक 100% आप, जैसे हम लोग हैं, हमें अभी कोई शरणागति, शरणागत हो गए तो हमें कोई ऋण है नहीं, न देवों का हमें शनि या शुक्र या मंगल कोई ऋण नहीं है, न हमें उनका डर है। क्यों? भगवान का नाम बड़ा, भगवान बड़े या शनि शुक्र या मंगल, मंगली हूं मैं, मंगला हूं, तो हमें क्या मंगल से लेना देना है, शनि से लेना देना है? हमारा शनि क्या बिगाड़ सकता है, हमारा भलाई करेगा। शनि अगर कुछ करना चाहे तो भक्तों की सेवा, उनमें उनकी भलाई होगी, शनि की भलाई होगी, मंगल की भलाई होगी। भक्तों के पीछे भगवान भी भागते। भागवत 11वां स्कंद 14वां अध्याय 16वां श्लोक, अनुव्रजामी अहम पुये यत्य अंग्रि रेणु भी, मेरे भक्त भक्त वत्सलता है भगवान की, ऐसा नहीं कि भगवान भक्त भगवान से बड़ा हो गया, लेकिन भगवान का ये भाव है, मेरे भक्त का बड़प्पन प्रेम है। तो भगवान कहते हैं कृष्ण, अनुव्रजामि अहम नित्यम पुयेत्य अंग्री रेणु भी, उन भक्तों उनका शुद्ध भक्तों का, उद्धव जैसे भक्तों का भगवान अनुगमन करते हैं, अनुगमन क्यों, उनकी अंग्री रेणु उनके चरणों की रेणु मेरे पर पड़े तो मेरे अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड सब पवित्र हो जाए, अनुव्रजामि। तो वहां धर्म की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि आपके पिता गुरु कजिन ब्रदर और ब्रदर मामा ये वो धर्मान परितज्य छोड़ दो, ये सब माम एकम शरणम एकम, देवी देवता भी नहीं, माम एकम कृष्ण, फिर बच्चों की देखभाल करने की जरूरत नहीं। श्रीधर स्वामी बच्चों को, छोटा नवजात बच्चा और पत्नी मर गई, नवजात बच्चा पत्नी मर गई और उनने देखा कि एक छिपकली है और उनने प्रसव किया, उनका बच्चा नीचे गिरा और वो छिपकली कोई संजोग वशात मर गई और वो बच्चा माता के बिना कैसे जिएगा। तो श्रीधर स्वामी को चिंता हुई, तो इतने में एक मक्खी जो छोटी मक्खी वो बच्चे के पास आई और बच्चा ने तुरंत हड़प कर लिया बच्चे का जीवन। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, मैं मेरे बच्चे की इतनी चिंता मैं करता हूँ, और देखो यहाँ भगवान की कितनी सुंदर अरेंजमेंट। तो उनने छोड़ दिया घर, नया बच्चा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्या किया श्री कृष्ण की सत प्रतिशत शुद्ध भक्ति शरण। वो ये 2500 साल हो गई, आज भी हम श्रीधर स्वामी को भागवत की टीका, उनकी भागवत की टीका के बराबर किसी की टीका नहीं, इनको हम रिस्पेक्ट देते हैं श्रीधर स्वामी को। तो ये वैराग्य है, लेकिन जब तक वैराग्य सैंत प्रतिशत सत प्रतिशत परिपक्व न हो तब तक ये धर्म आप नहीं छोड़ सकते। तो बच्चों का पालन लालन पोषण हमें करना ही चाहिए, हमारा धर्म है, हमारी फर्ज है, और उसके साथ अनासक्ति भी हम कल्टीवेट साइड बाय साइड कर सकते हैं। अनासक्ति, अंदर से अनासक्त रहो, बाहर से आसक्त रहो, धर्म बजाओ, अंदर से भगवान के साथ जोड़ते रहो और बाहर से धर्म बजाते रहो, पत्नी का पति का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म बजाते रहो, नो कोप आउट, छटक मत जाओ कि ये मेरे से बहुत कड़ा काम है, बहुत कष्ट है, मैं सब छोड़ दूं। नहीं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने जोड़ दिया सब कुछ, पत्नी जोड़ दी, बच्चे जोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ा नहीं। छोड़ने का हमारा इस्कॉन आपको छोड़ने का नहीं सिखाती, जोड़ने का सिखाती, जोड़ो श्री कृष्ण से सब कुछ जोड़ो, छोड़ो नहीं। आपका बैंक बैलेंस छोड़ना नहीं है, टाइट रखो, लेकिन कृष्ण के संबंध में रखो। आपका घर कोठी छोड़ो मत, जोड़ो। आपका शरीर मन बुद्धि अहंकार छोड़ो मत, जोड़ो कृष्ण से, जोड़ो। बच्चों को पालन पोषण करो और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भक्ति में जोड़ो, उनका भी कल्याण आपका भी कल्याण, तो जोड़ो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? दूसरा, निरंकार परमात्मा एंड भगवान वदंती तत्व, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, पहले ही अध्याय में भागवत की शुरुआत, वदंती तत्वविदं तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। वदन्ति तत्वविद, तत्वविद तत्व को जानने वाले ऋषि मुनि, तत्वविद वदन्ति कह रहे, बोल रहे, वदन्ति तत्वविदं तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। तत्ववेत्ता एक ही अद्वैत तत्व को तीन रूपों में बताते हैं। अद्वैत तीनों एक है, लेकिन तीनों में शक्ति का संचार अलग है। शक्ति है सब में, वही दिव्य शक्ति, लेकिन शक्ति का संचार अलग अलग है। ब्रह्म ये भगवान परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के शरीर की ब्रह्म ज्योति आभा प्रभा है, इसको ब्रह्म बोलते हैं, इसको निराकार बोलते हैं। तेज निराकार है, तेज को आकार नहीं है। तो ज्यादातर 90% मनुष्य लोग उपासना करते हैं ये तेज की, ब्रह्म ज्योति की, निराकार की। तो ये ब्रह्म ज्योति ये सत एस्पेक्ट, सत चित आनंद, तो ये सत ही आनंद नहीं है, निरानंद निर्विशेष, उसमें कोई आनंद नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। तो ये ब्रह्म का अर्थ है जिस बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं, ब्रह्म। और तेज भगवान का जो पुंज है, तेज पुंज, और तेज पुंज से कोई बड़ा नहीं, ऑल परवेसिव, सब जगह भगवान का तेज। और ये सत्य को रिप्रेजेंट कर, सत सनातन सत। तो ये ब्रह्म निराकार, और इसमें आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। न ये निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है, इसलिए कृपा भी नहीं कर सकता। तो ये है निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म। और ज्यादातर 90% क्यों ब्रह्म की उपासना करते हैं? क्योंकि वहां सरेंडर करना नहीं है, वहां उसमें बल मिल जाना है, ब्रह्म लीन हो जाना है। तू तीन ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, सोहम तुम, सोहम सोहम, या तो तत्वमसी, तू जो है वही मैं हूं, त्वमसी, असी मैं, तू जो है वही मैं हूं, तू जो है वही मैं हूं, इसलिए मैं भी भगवान, तू भी भगवान और मैं भी भगवान, और भगवान मर गया। दिस इज अ फिलोसॉफी, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एंड गॉड इज डेड। तो ये कैवल्यम नरकायते द्वादश पुर आकाश पुष्पायते विद्धि महेंद्र आदि कीटायते, देवी देवताएं कीट है, आत्माएं, और महेंद्र आदि, महेंद्र मतलब इंद्र, महेंद्र आदि कीटायते विश्वम सर्वम सुखायते। तो ये कैवल्यम नरकाय, कैवल्य मुक्ति नरक जैसी मूर्ति मुक्ति है। जो निरंकारी है, जो निराकार की उपासना करते हैं, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं, तो उनका ब्रह्म ज्योति में मिलना ये कैवल्य मुक्ति नरक से भी निकृष्ट है, नरक से भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई सेवा नहीं, कोई आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान नहीं, उधर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई संग नहीं, और लटकना भटकना, जैसे कि रजकण सूर्य के किरणों में इधर उधर लटक के भटकते रहते हैं, तो वैसे ये जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में भ्रमता रहता है। और कोई वेरिएगेटेडनेस नहीं, कोई विविधता नहीं, विविधता इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट, वेराइटी इज अ मदर ऑफ, तो कोई वेराइटी है नहीं, खाली तेज का पुंज, और उसमें आप, और वहां सरेंडर है नहीं, कोई शरणागति है नहीं, इसलिए सबको अच्छा लगता है कि कोई शरणागति है नहीं, मैं खुद भगवान बन जाऊं। वो बोल लिखते हैं, ब्रह्मलीन लोग लिखते हैं ब्रह्मलीन, तो वो क्या कहते हैं, समुद्र का बूंद समुद्र में मिल गया समुद्र बन गया। लेकिन ये गलत उदाहरण है। हरा पक्षी हरे पेड़ पर, तोता सुख हरे हरे पेड़ पर बैठता है तो दूर से लगता है दोनों एक दूसरे में मिल गए, लेकिन तोता तोता रहता है और पेड़ पेड़ रहता है। तो ये ब्रह्म ब्रह्म कृपा नहीं कर सके। निर्गुण है, निर्विशेष तेज का पुंज है और खाली सत एस्पेक्ट है, इसलिए वो कृपा नहीं कर सकता। सत सनातन है, आनंद नहीं है उसमें और न चित ज्ञान नहीं है, सत का संचार है ज्यादा और आनंद और ज्ञान बहुत कम मात्रा में। सत चित आनंद और ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा भगवान का चार हाथ वाला विष्णु का स्वरूप हमारे हृदय में है परमात्मा। तो योगी लोग अपने हृदय में सिक विद इन देसे, अंदर खोजो तो अंदर कौन है, भगवान है, आत्मा परमात्मा सिक विद इन। तो ये परमात्मा सत और चित दोनों मिला के चित ज्ञान, तो ज्ञानी लोगों का ये विषय है। ज्ञानी लोग परमात्मा पर ध्यान करते हैं और ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है, वो निराकार मुक्ति ब्रह्मलीन। ज्ञानी लोग ब्रह्म में लीन होते हैं। तो ये परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा पर ध्यान करके ज्ञानी लोग क्या बनना चाहते हैं, परमात्मा बनना चाहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि तू है वो मैं हूं। तो ये नरक है, सब कुछ नरक है। जो योगी हैं उनका डेस्टिनेशन है सिद्ध लोग, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्ञानियों का, इनको बोलते हैं सिद्ध लोग। और भक्त लोग भगवान इति सभ्यते, भगवान तो भगवान में सत चित आनंद है पूर्ण मात्रा में। परमात्मा में क्या है, सत और चित सनातन है और चित ज्ञान है। ज्ञानी लोगों का ये ध्येय है। तो परमात्मा हृदय में बैठे हैं, वो उपद्रष्टा उनमंता, उपद्रष्टा मतलब वो देख रहे हैं कि ये जीवात्मा क्या कर रहा है और उनके कर्मों के मुताबिक उनको फल देते हैं। उपद्रष्टा उनमंता, तो उसमें कृपा कहाँ आई, मैं जो करता हूं उसका मुझे फल मिलता है, अच्छा कर्म अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म बुरा फल मिलता है, तो उसमें दया कहाँ आई। अगर मैंने बुरा कर्म किया, मेरा डेस्टिनेशन, मेरा दुख कारण बनेगा, तो परमात्मा अपनी अनुकंपा से हमारा दुख हरण कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं करता, वो उपद्रष्टा है। परमात्मा आपको आपके कर्मों का फल अच्छा बुरा देगा, वहां कृपा नहीं होती, कृपा नहीं मिल सकती। लेकिन भगवान में सत चित आनंद तीनों फूल मात्रा में, और भगवान कृपालु है। क्यों सच्चिदानंद है, भगवान कृपालु है, भगवान अकारण कृपा भी कर सकते हैं, कृपा सिद्धि हमें मिल सकती है, और भगवान की कृपा से ही काम बनता है सब काम। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, तो वो भगवान ही कृपालु है, न परमात्मा न ब्रह्म न तेज न निराकार, कृष्ण ही कृपालु है। ये इनका स्वभाव है, टॉप मोस्ट स्वभाव उनका स्वभाव है। रसिक शेखर, रसिक रस का आस्वादन करना भी उनका स्वभाव है, लेकिन परम करुण कृष्ण रसिक शेखर, परम करुण, परम करुणा, ये उनका सबसे ऊंचा धर्म है श्री कृष्ण का। ये करुणा, करुणामयी द्रौपदी पुकारी, पट्ट में लिपट गए वनमाली, करुणा। तो ये करुणा कृष्ण में मिल सकती है हमें, और उनके दूसरे एस्पेक्टों में नहीं मिल सकती। तो भगवान, ये भगवान इति सभ्यते, उदाहरण देते हैं, वो ट्रेन का उदाहरण देते हैं, पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में ट्रेन दिखाई देती है, बाद में ट्रेन का ड्राइवर भगवान दिखाई देते हैं। तो लाइट निराकार और ट्रेन परमात्मा और ड्राइवर भगवान चलाने वाला। तो ऐसे ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, एक ही तत्व है लेकिन मात्रा शक्ति अलग अलग है। सत सचित एंड सच्चिदानंद। तो भक्तों का डेस्टिनेशन है भगवान श्री कृष्ण, और वहां प्रेम का संपूर्ण आदान प्रदान है। उनके साथ आप खेल सकते हो गेंद, उनके साथ आप नाच नचा सकते हो। वो छलिया पर छाछ के लिए कृष्णा नंगे नाचते हैं, मुझे छाछ गोपी दे देगी, भगवान को नचा सकते हो आप। मम सिरसी देही पाद पल्लव युगम, राधा रानी को कृष्ण कहते हैं, गीत गोविंद का श्लोक है। कृष्ण राधा रानी को भक्तों को कहते हैं, आपका पाद पल्लव युगम दोनों चरणों मेरे चरण मेरे सर पर रखो। कृष्ण की है ये, कृष्ण के साथ भक्तों का व्यवहार, भक्तों के साथ कृष्ण का व्यवहार बराबर हो जाते हैं भगवान। वहां प्रेम संपूर्ण प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। कोई भंगी स्त्री है और सारी दुनिया का मालिक राजा है, उन दोनों के साथ अगर कुछ संबंध भी हुआ फिर भी डिस्टेंस बहुत रहेगा, उसमें इंटेंस प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता, ऑ एंड रेवरेंस डिस्टेंस रहेगा। लेकिन यहाँ व्रज में भगवान व्रज के भक्तों को बराबर हो जाते हैं, व्रज के भक्तों के बराबर रागानुग स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस रागानुग भक्ति। भगवान डिस्टेंस नहीं रखते, भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त भी भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता भूल जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और बराबरी में आदान प्रदान प्रेम का 100% इंटेंसिटी बढ़ जाती है बराबरी में। तो ये भगवान ही कर सकते हैं, तेज का पुंज नहीं कर सकता, परमात्मा नहीं कर सकता। परमात्मा सो सेल यू रिप, जो आप करोगे उन्मनता उपद्रष्टा आपके कर्मों के मुताबिक वो आपको फल देगा। लेकिन भगवान उनके रास्ते से भी और जाके हमारी भलाई इच्छेंगे। पांडवों की कितनी भलाई, पांडव युद्ध कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो पांडव लोग रात को खर्राटा बुला रहे हैं, सो रहे हैं, और भगवान दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, ये तीर ले आए और ये गंधारी का दर्शन कर दो वज्र का हो जाएगा। भगवान भागते हैं, विष्णुदेव से 5 बाण लेने के लिए भागते हैं, और रात को भगवान न रात में निंद्रा न दिन में हाथ सारथी हैं, और दिन में भागा दौड़ी है, रात को भागा दौड़ी है, और भक्त लोग बस सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं। ये भगवान का भाव है, भगवान कर सकते, परमात्मा नहीं, निराकार नहीं कर सकता है। कौन से निराकार ने कौन सी भक्तों की सेवा की बताइए, कोई है उदाहरण कि ये निराकार भगवान ने ये भक्तों की इच्छा पूर्ति की या भक्तों की रक्षा की? कौन से निराकार भगवान ने ये किया? आपको उदाहरण होना चाहिए ना, आपके पास है? किसी के पास उदाहरण है? हम सब निराकार थे पहले, कई लोग यहाँ निराकार थे, और कौन से परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा कर दी? उन्मनता उपद्रष्टा सो सेल यू रिप, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देंगे, कौन सी कृपा है उसमें? लेकिन श्री कृष्ण रात में आपके लिए भागा दौड़ी करते, ये भक्त वत्सलता है, ये हमारे भगवान की भक्त वत्सलता, ये उनकी करुणा, भगवान इति सभ्यते। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शुद्ध भक्त के लक्षण, भक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्ति, पहले तो उनकी परिभाषा। सामान्य भक्ति की परिभाषा कौन सी है? कि अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, और वो कैसे? उपाधियों से मुक्त होके, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हमारी इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना उपाधियों से मुक्त होके, मैं बड़ा धनिक और मैं बड़ा रूपवान धनवान कुलवान जिसकी बीड़ी बीवी बड़ी उनका बड़ा। तो ये अहंकार छोड़ के क्या करना है, अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य भक्ति। और शुद्ध भक्ति किसको बोलते हैं, अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माद अनावृतम। ज्ञान और कर्म को छोड़ के, जीरो ज्ञान जीरो कर्म, ज्ञान कर्माद अनावृतम। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, श्री कृष्ण को जो अनुकूल है वैसी उनकी सेवा करना, अनुशीलन करना। श्री कृष्ण को अनुकूल है वैसा अनुशीलन करना, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, अन्य अभिलाषा शून्य, सब अभिलाषा शून्य। मेरे प्राण प्रियतम को क्या चाहिए, बस वही होगा और कुछ नहीं होगा। गोपियों ने कुछ नहीं किया, कृष्ण की खुशी में खुशी, कृष्ण के दुख में दुखी। तम सुखे सुखित्वम, तम दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। ये गोपियों का स्वभाव, तम दुखे दुखित्वम, तम सुखे सुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। अन्य अभिलाषा शून्य, भगवान श्री कृष्ण कैसे मैं सुख दूं, उनका सुख देना एकमात्र अभिलाषा। अन्य अभिलाषा भक्ति की अभिलाषा, और कोई अभिलाषा नहीं। अन्य अभिलाषा शून्य, और ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, ज्ञान में अंत सोहम सोहम करते हुए हम भगवान बन जाते हैं। ज्ञानी लोग क्या लिखते हैं, मर जाने के बाद ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म बन गया, मतलब भगवान बन गया। ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ये भगवान का एस्पेक्ट, तेज पुंज भगवान का, उसमें लीन हो जाते हैं। तो ये भक्तों की, ज्ञानियों की ये गति है। तो हमें ये ज्ञान नहीं चाहिए, इसलिए ज्ञान शून्य। जो ज्ञान से हम भगवान में मिल जाए और भगवान भगवान न रहे, हम न रहे, वो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि कैवल्यम नरकायते, कैवल्य मुक्ति नरक है। हमारे गोस्वामियों ने मुक्ति को भी मुक्ति दी, कैवल्य निस्तार को वंदे रूप सनातनो रघु युगो, कैवल्य को निस्तार, उनका त्राण किया, त्रणाय उनको, कैवल्य मुक्ति को, सब मुक्ति को मुक्त किया। ये हमें नहीं चाहिए, ज्ञान कर्माद। और हमें कर्म, कर्म का अर्थ हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उपार्जन करने के लिए जो कर्म करते हैं उसको बोलते हैं कर्म। तो हमें कर्म शून्य, ज्ञान कर्माद अनावृतम। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, श्री कृष्ण की अनुकूलता। उनको दूध चाहिए तो आप कोका कोला मत दो, उनको पानी चाहिए तो सेवन अप मत दो, पानी दो। उनकी अनुकूल का, जैसे भगवान को मथुरा जाना था, अक्रूर आया और रथ में आरूढ़ हुए, गोपियां कोई रथ पकड़ रही है, कोई वाजी के लगाम पकड़ रही है, कोई कोई भगवान को पकड़ रही, कोई कई कर रही है, कोई आगे रास्ते में सो गई आड़ी सो गई हमारे ऊपर से रथ। लेकिन जब भगवान की मर्जी देखी कि भगवान को मथुरा जाना है, तो रास्ता छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की मर्जी में, सुख खुशी में अपनी खुशी समझी। हालांकि उनका प्राण निकलता जा रहा था, तो मछली पानी के बिना तड़प रही थी, सब गोपियों का प्राण निकल रहा था। उनका प्राण कृष्ण ही थे, उनका प्राण प्राण नहीं था, उनका प्राण ही कृष्ण थे। फिर भी कृष्ण की अनुकूल, कृष्ण अनुशीलनम, उनकी मर्जी देखी तो हमारा जो होगा सो होगा, हमारा प्राण निकल जाए। तई त्वयि ध्रुत आसव त्वाम विचिन्वते, हे कृष्ण हम आपके लिए ही ये प्राण धारण कर रहे हैं। हमारे प्राण कब के निकल जाने वाले थे, लेकिन आपके लिए हमें हमारे प्राण धारण कर रहे हैं। त्वयि ध्रुत आसव त्वाम विचिन्वते, तो ये अनुकूल भक्ति है। कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं, उनके अनुरूप हम उनकी सेवा करें। उनको बोलते हैं कृष्णा अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ये शुद्ध भक्ति है। तो आइए भक्ति के लक्षण क्या है शुद्ध भक्ति के। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के पहले पेज पर ये शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए। अगर आप शुद्ध भक्ति करते हो तो सबसे पहले आपके सब दुख जीरो हो जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में पहला, सबसे पहला पेज, तो पहला लक्षण है क्लेशग्नि। यहाँ लिखा है शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से अविलंब राहत देती है। क्लेशग्नि शुद्ध भक्ति क्या करती है, हमारे सब भौतिक क्लेशों को खत्म कर देती है। रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या क्लेश होगा, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को प्रभुपाद जी को क्या क्लेश होगा, क्या क्लेश हो सकता है, क्लेश अग्नि। शुद्ध भक्त को कोई भी प्रकार का भौतिक दुख नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं कृष्ण का शुद्ध भक्त हूं, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने जा रहा हूं। तो उनको उनसे क्लेश कितने दूर जाएंगे, करोड़ों योजन दूर रहेंगे उनसे, उनके पास दुख आ ही नहीं सकता। क्लेश अग्नि सुभदा, शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त के जीवन में सब प्रकार का शुभ कल्याण ऑस्पिशियसनेस लाती है। शुद्ध भक्ति कल्याण लाती है सुभदा। शुद्ध भक्ति साधरानंदी, सुभदा साधरानंदी। शुद्ध भक्ति भक्त के जीवन में साधरानंद अनंत आनंद जो खुटने वाला नहीं है, इतना आनंद, आनंद का सागर लेके आती है शुद्ध भक्ति। साधरानंदी विशेष आत्मा और सुदुर्लभा, विशेष शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है, आसानी से शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी आपको। परमात्मा ब्रह्म निराकार और ये सब ध्यान सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध भक्ति भगवान ज्यादातर नहीं देते, क्योंकि शुद्ध भक्ति से भगवान खुद भक्त की गिरा में बंद जाते हैं। भगवान बंदी बन जाते हैं। तो सुदुर्लभा भक्ति दुर्लभ है, इसलिए भक्त 5% और 95% ऑफ द पीपल अभक्त होते हैं। सुदुर्लभ है भक्ति, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं देंगे। जैसे मम्मी खाना पकाना है तो बच्चे को खिलौना हर किस्म का खिलौना दे देगी, बच्चा खेलता रहे, और यही मेरी दुनिया है और मम्मी स्वतंत्र। उसी तरह हमें पत्नी खिलौना, पति खिलौना, पैसा खिलौना, कोठी खिलौना, बिजनेस खिलौना, तीस खिलौना, सब खिलौना दे देंगे, भगवान स्वतंत्र और हम खिलौने के साथ खेलते रहे, है ना। हर पल अज्ञानता बस खिलौनों के साथ खेलते रहे। तो ये सुदुर्लभा और मोक्ष लघुता कृतम, भक्ति मोक्ष को लघु बना देती है, इनसिग्निफिकेंट। तो हरिना जन तो मुक्ति नाम आगे, मागे जन्मो जन्म अवतार ले, नित सेवा नित कीर्तन औच्छव निरखवा नंद कुमार रे। हरिन दियमानाम न गृणंती, देने पर भी वो भक्त लोग मुक्ति स्वीकारते नहीं, दीयमानानां न गृणन्ति, विना मत सेवना जना। पांच प्रकार की मुक्ति भक्त को देने पर भी भक्त स्वीकारता नहीं, तो मोक्ष लघुता कृतम, शुद्ध भक्ति मोक्ष को लघु बना देती है। इनसिग्निफिकेंट, मोक्ष लघुता कृतम और कृष्ण आकर्षिणी च, शुद्ध भक्ति कृष्ण को भक्त की ओर आकर्षित करती है, भगवान भक्त शुद्ध भक्ति से भक्त की ओर भागते हुए दौड़ते हुए जाते हैं, रहा नहीं जाता भक्तों के बिना, शुद्ध भक्तों के बिना भगवान से। इसीलिए कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मत भक्ता, मेरे भक्तों के बीच में मैं रहता हूं। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है, भक्ति विधिसर करनी चाहिए या टाइम लेके करनी चाहिए। तो वैसे शुरुआत में हमें चाहिए कि हम विधि विधान टाइम सर और नियम के साथ हम भक्ति करें, और आगे जाते हुए भक्ति जब परिपक्व होती है तो एक पल आपकी भक्ति के बिना जाएगी नहीं, हर पल आप भक्ति करोगे। और भक्ति की परिभाषा भी थोड़ी बृहद होगी कि आप कमाते हो 8 घंटा, सेठ की नौकरी करते हो, तो ये उपार्जन जो होगा, घर चलाएंगे, प्रसाद भगवान के लिए, भगवान का मॉर्गेज या भगवान के मंदिर के लिए रेंट किराया, तो ऐसे आपकी अविरत भक्ति होगी। हमें हमारा कॉन्शियसनेस बदलना है, करना यही है जो आप कर रहे हो, और उनको 24 घंटे की भक्ति में आपको बदलना है, आपका बिजनेस, आपका मन, खान पान, पहनना, सब कुछ भगवान के संबंध में हो जाएगा। तो 24 घंटा ये स्पॉन्टेनियस भक्ति कहते हैं उनको, रागानुग भक्ति कहते हैं। लेकिन विधि भक्ति भी करनी होगी, साधना भक्ति भी करनी होगी, बाह्य इंद्रियों से साधना भक्ति, विधि भक्ति, और अंत चिंतित देह से, मन बुद्धि अहंकार से, ध्यान वगैरह से हम रागानुग भक्ति करेंगे, दोनों साइड बाय साइड, दोनों साथ में। ऐसा नहीं मैं रागानुग भक्त हूँ, मुझे कोई वैदिक भक्ति करने की, साधना भक्ति करने की जरूरत नहीं, मुझे हरि नाम करने, मुझे 16 माला करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। माला बढ़ जाएगी रागानुग भक्ति करोगे तो। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 माला करते थे हर रोज, शुद्ध भक्त थे, उच्च भक्त थे। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप हर रोज। तो ये साधना भक्ति, और वो रागानुग भक्त थे, सब मंजरी थी, रघुनाथ दास गोस्वामी रस मंजरी है, मंजरी। तो ये है कि हमें पहले शुरुआत में टाइम सर, विधि विधान और सब कुछ ऐसे शुरू करते हैं, और बाद में उसमें भी साधना में अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो दोपहर माला करो, दोपहर को टाइम नहीं मिलता शाम को करो, लेकिन सबसे अच्छी माला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, तो ये सिलसिला करो। आगे भक्ति के स्टेजेस, अर्थात प्रेम के स्टेजेस। भक्ति का अर्थ निरुक्ति में है प्रेम, तो 8 स्टेज हैं भक्ति के या प्रेम के, वो हैं आदौ श्रद्धा, पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, ये जगत परमात्मा ने बनाया, मुझे भी परमात्मा ने बनाया, श्री कृष्ण जैसे भगवान उनके धाम में हैं। श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात भगवान के शब्दों में पूर्ण विश्वास, उनको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा किसको कहते हैं, श्री कृष्ण के वाणी में संपूर्णतया विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ऐसा विश्वास के श्री कृष्ण की भक्ति करने से मेरे सब कर्म सफल हो जाएंगे, ऐसा विश्वास उनको बोलते हैं श्रद्धा। भगवान के शब्दों में विश्वास, पूर्ण विश्वास, उसको बोलते हैं श्रद्धा। तो पहले शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति की श्रद्धा से। श्रद्धा, ये भक्ति करूंगा, माला करूंगा तो मेरा कल्याण होगा ही होगा, श्रद्धा। तो आदो शुरुआत, आदो का अर्थ है शुरुआत, कहाँ से होती है? श्रद्धा से। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, बाद में साधुओं का संग, जैसे आप ये सेंटर में आते हो, एक दूसरों के साथ संग करते हो, है ना? तो ये साधु संग आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको साधु संग में रुचि, साधु संग करने में आपको आनंद आएगा, तो ये भक्ति में आगे बढ़े। दूसरा सोपान, दूसरी सीढ़ी, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, ये भी ये इसका श्लोक है। ये बहुत उच्च प्रकार का शास्त्र है, आपको कम से कम ये 25 बार पढ़ना चाहिए जिंदगी में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये रस का, भक्ति रस का ये पुस्तक है, और रूप गोस्वामी भक्ति रस के सबसे वरिष्ठ उच्च कक्षा के आचार्य है, रूप गोस्वामी रसिक आचार्य है, उनके बराबर और उनके ऊपर अभी तक ऐसा रसिक आचार्य न हुआ है, न होगा, और उनके ये भक्ति रसामृत सिंधु का भाग ही समझ लो। लेकिन दूसरी किताब है उज्ज्वल नीलामणि, ये रस का शास्त्र है, उज्ज्वल नीलामणि, ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। आप ये दोनों शास्त्र में पारंगत हो तो इनका श्लोक है क्या? आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, साधु संग के बाद आप भजन क्रिया करने लगो, भजन करने लगो, 16 माला और भगवान को भोग लगाना वगैरह वगैरह, भजन क्रिया शुरू होगी, पढ़ाई करना, भागवत गीता वगैरह पढ़ाई करना, ये भजन क्रिया करोगे। आदो श्रद्धा तथा साधु तथा भजन क्रिया, भजन क्रिया कौन सी सीढ़ी है, कौन सा सोपान? तीसरा। बाद में भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्, बाद में आपके अनर्थ जाते रहेंगे, अनर्थ कम हो जाएंगे, बीड़ी पीना, चाय पीना और गपसप करना, या तो गंदी चीजें खाते रहना, सब अनर्थ आपके छूट जाएंगे, तो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ये चौथा सोपान है, तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा, बाद में सोलिडिफाइड फेथ। निष्ठा, निष्ठा किसको कहते हैं? जब हमारी श्रद्धा बहुत गाढ़ और पक्की हो जाती है तो उनको बोलते हैं निष्ठा, निष्ठा भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों में निष्ठा, तथा निष्ठा तथा आसक्ति, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा रुचि, तथा रुचि, रुचि का अर्थ है टेस्ट, आपको टेस्ट डेवलप होगा, जैसे कि पकोड़ा सुगंध आती है तुरंत आपका सबको पकोड़ा खाने का टेस्ट है ना, मन होता है, तो वैसे भक्ति करने में आपको, भक्ति के बिना आप रह नहीं सकोगे, भक्तों के बिना आप रह नहीं सकोगे, पढ़ने भागवत गीता भागवत पढ़ने के बिना रह नहीं सकोगे, ऐसा टेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, बाद में आपको भगवान से आसक्त हो जाओगे, आसक्त संलग्न भगवान के साथ आसक्त, जैसे बच्चों में, पत्नी में, पति में हम आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कृष्ण में हम आसक्त हो जाएंगे, तथा निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तथा भाव, और बाद में भाव पैदा होगा आपके हृदय में, श्री कृष्ण के बारे में भाव पैदा होगा, रोना, रोटे खड़े हो जाना, स्तंभ हो जाना, स्ट्यून हो जाना, स्तंभ हो जाना, पसीना आंसू नयनों में से खुट आंसू वगैरह वगैरह, सट आठ सात्विक विकार भाव पैदा होना। भाव ये भाव है। भाव क्या है कि नाम गाने सदा रुचि, ये भाव भाव के लक्षण है कि हाँ, क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद वसति स्थले गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले इति आदयोर भावांकुरे जने। जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम का भाव का अंकुर फूटा हो उनको ये उनके भाव का भाव है, भाव का अंकुर फूटा हो उनके लक्षण है क्या? क्षांति मोस्ट टॉलरेंट, क्षांति अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी फिजूल में श्री कृष्ण की भक्ति के बिना गवाएगा नहीं। क्षांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, ये संसार से विरक्त हो जाएगा। विरक्ति मान शून्यता, कोई भी प्रकार के मान की बिल्कुल अपेक्षा नहीं, जीरो मान्य मान। विरक्ति मान शून्यता, आशाबद्ध हमेशा आशाबद्ध रहेगा, एक दिन श्री कृष्ण की अमी दृष्टि कृपा मेरे पर बरसेगी, एक दिन कृष्णा मेरे पर कृपा करेंगे, आशाबद्ध। समुत्कंठा हमेशा उत्कंठित रहेगा भगवान के मिलन के लिए, उत्कंठित। ऐसा नहीं कि 100 साल हो गई मुझे कृष्ण नहीं मिले, छोड़ो ये बेकार का। नाम गाने सदा रुचि, और श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र गान में उनकी हमेशा रुचि। 16 माला हो गई, मैं ज्यादा करूं, लेकिन हम तो 16 माला हो गई हास जान छुटी। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। और आसक्ति तद वसति स्थले, भगवान जहां जहां रहे, अयोध्या, ब्रज, वृंदावन, द्वारिका, वहां हमारी आसक्ति हो रहने के लिए, आसक्ति तद वसति स्थले, और प्रीति तद गुणाख्याने, हमें उनके कथाओं की सुनने के लिए हमें प्रीति, हमेशा लालच, लालत लालायित, आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले इति आदयोर भावांकुरे जने। जिनके हृदय में भाव का अंकुर पैदा होता है, भावांकुर, और प्रेम अभिदंचन्ति साधकानां अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा नर्त निवृत्त स्यात् तथा निष्ठा रुचि तथा तथा आसक्ति तथा भाव प्रेम अभ्युदंचन्ति साधकानां अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रम। ये क्रम है भक्ति के, स्टेजेस भक्ति के क्रम है, भक्त प्रेम के क्रम है, और आखिरी में भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, आखिरी सवाल है। तो भक्ति में आगे बढ़ने का भी श्लोक रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में लिखा है, 3रा श्लोक, उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात सतो वृत्ते सड़वीर भक्ति प्रसिद्धति। कि भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे कैसे, उत्साह से, निश्चय से, धीरज से, श्रवण कीर्तन वगैरह भक्ति से, और संग त्यागात, जिनको कृष्ण भक्ति में रस नहीं उनका संग का त्याग करना, संग त्यागात सतोवृत्ते, आगे वाले सब आचार्यों के गुरु के चरण चिन्हों में चलना, ये 6 चीजों से भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलो हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कलयुग में संगठन में शक्ति है, एकाकी हमारा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, हमारा अकेले का हरि नाम करने में बल नहीं चलता, संगठन में ही शक्ति है। इसलिए हमारी संस्था संगठन वाली संस्था, जैसे आप पंचतत्व 5 जीबीसी 30 जीबीसी, एक कोई इंचार्ज नहीं, 30 संगठन में शक्ति है। तो हम एक डाल के पक्षी हैं, इस्कॉन डाली, इस्कॉन डाल है, डाल मतलब ब्रांच, पेड़, कदम की डाली को बोलते हैं डाल। तो उनके ऊपर बैठे हुए हम सब एक डाल के पक्षी, अलग अलग डाल के पक्षी नहीं है। तो कोई पक्षी आगे बढ़े चढ़े हुआ है, कोई पक्षी पीछे है, कोई पक्षी बीच में है, कोई इधर उधर, जिनकी जितनी शक्ति उतना पक्षी ऊंचे उड़ सकता है। लेकिन हमें बैठना है एक डाली पर और संगठन। तो इसके लिए जैसे पति पत्नी, पत्नी पति का अपराध माफ कर देते हैं और करना चाहिए और करते हैं ऐसा, तो वो घर में लक्ष्मी हमें श्वास करती है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि पति पत्नी का जितना ज्यादा हिलमिल जुल मतलब प्रेम और संगठन और एक दूसरों का प्यार और सहयोग और एक दूसरों का प्रेम, जितना ज्यादा इतनी ज्यादा वहाँ लक्ष्मी रहती है। तो ये संगठन में शक्ति है। घर में भी अगर 4 भाई संगठित हैं, घर में जितने लोग हैं वो तारतम्य मिलता है उनका, लेकिन एक पंचम सुर गाता है, एक सा से शुरू करता है और कोई बीच में इधर उधर, तो उसमें जीने का हमें कोई मौज मजा नहीं रहेगी। जीने की मजा कैसे रहेगी? मुझे मेरी पत्नी से डर, पत्नी को मुझसे डर, मुझे मेरे पुत्र से, मेरी पुत्री से डर और उनको मेरा डर और हमेशा फ्रिक्शन। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ये जंगल है, जंगल गृहस्थ आश्रम नहीं है, ये क्या है? जंगल है। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी वनम तम गंतव्यम यथा वनम तथा गृहम, कि प्रेमाण माता नहीं घर और पति पत्नी अप्रियवादिनी, अप्रिय बोलते हैं एक दूसरों को, तो वो वन बन जाता है, जंगल बन जाता है। जंगल का अर्थ है कि शेर और सांप, ये घर जंगल बन जाता है। इससे अच्छा है कि जंगल में जाना चाहिए चाणक्य पंडित। तो ये जो हमारा सेंटर है वो हिलमिल जुल के एक दूसरों से प्रेम करके, एक दूसरों का अपराध माफ करके, एक दूसरों को अपराध नहीं करके, उदार हृदय, सबका अपराध एब्जॉर्ब कर लो और एक दूसरों का यहाँ चुगली नहीं, संगठन में शक्ति। इस्कॉन एक है, इसी तरह ये सेंटर भी इस्कॉन के साथ एक है। इसी तरह इस सेंटर में जो भक्त हैं, सब भक्त आते हैं, वो सब एक, वन सोल। तो भक्ति यहाँ फ्लरिश, भक्ति यहाँ कैसे होगी? जैसे मैंने बताया क्या था कि ये सारा विष्णु गार्डन यहाँ आएगा, ढूंढते हुआ विष्णु गार्डन यहाँ। और कोई सवाल, एनी क्वेश्चन?
भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में बेसिकली डिफरेंस क्या, बेसिक डिफरेंस क्या?
बेसिक डिफरेंस कोई नहीं, बेसिकली एक ही चीज है। एक अगर उनको आप भगवान कहो तो दोनों मिला के एक ही भगवान है, कोई अलग नहीं। लेकिन जब रस की बात आती है, रस या तारतम्य की बात आती है, तो विष्णु भगवान से कृष्ण में 4 गुण और ज्यादा है। वो है श्री कृष्ण प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। तो ये चार माधुरी विष्णु से ज्यादा है। लेकिन कृष्णा, राम, नारायण, विष्णु ये एक ही है, एक नट है, रूप अलग है। अब ये राजा का पाठ कर रहे हैं और यहाँ कुछ और पाठ चल रहा है और यहाँ कोई और एक्टिंग चल रही है, लेकिन एक्टर एक है, वो है कृष्ण। ओरिजिनल एक भगवान है, वो है कृष्ण। विष्णु उनका उनका स्वाम सवतार है, राम उनका अवतार है, नरसिंह वामन उनका अवतार, स्वाम स्व अंश खुद है स्वरूप। कहने का मतलब यह है कि एक ही चीज है, अलग अलग रूप है। दीपार्चिर एव दशांतरम उपेत्य विवृत हेतु समान धर्मा। जैसे एक दीप, ओरिजिनल दीप जल रहा है, दूसरे सब दीपों को वो जलाओगे वो दीप से, तो सबका कैंडल पावर एक है, लेकिन ओरिजिनल कैंडल ये है जो जिसमें से सबसे कैंडल का पावर आता है। तो विष्णु कृष्णा विष्णु राम नारायण वराह अच्छा अवतार कच्चा अवतार नरसिम्हा अवतार परशुराम अवतार अनंत कोटि अवतार, ये अलग अलग नाटक है। और नट कौन है? कृष्णा। वो नट बनता है अलग रूपों में, अलग अलग रूपों में नट, और वो नट अलग अलग शक्ति लेके जाता है, इसलिए ये अवतार अलग अलग बोले जाते हैं। शक्ति ऐश्वर्य अलग अलग होता है, लेकिन पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण शक्ति कृष्ण। भगवान एक है, वो है कृष्ण। ये शास्त्रों का कथन है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत तीसरा पहले स्कंद का तीसरा अध्याय। ये सब अवतार, विष्णु अवतार, सब अवतार बताए। विष्णु तीन है, वो पुरुष अवतार है। वैसे विष्णु अनंत कोटि है, अनंत विष्णु है, जितने ब्रह्मांड इतने ब्रह्मा विष्णु महेश, इतना विस्तार ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड में है। और कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये विष्णु अवतार विस्तार। और कोई सवाल?
देवी देवताओं को तो सुना है, सब शास्त्रों में भी है। ईसाई का तो किसी शास्त्र में
नहीं है ना? साई ये तो मुस्लिम है, हम मुस्लिम धर्म निकालने जा रहे हैं। साई के फॉलोअर सारे मुस्लिम है, उन लोगों को हिंदू कहना ही नहीं चाहिए। हिंदू भी नहीं, वैदिक साहित्य उनका। साई लोगों का शास्त्र कौन सा है? कौन सा शास्त्र? साई बाबा का शास्त्र कौन सा है? शिरडी साई कौन सा शास्त्र है? शिरडी साई सूफी था, सूफी सूफी मतलब कि मुस्लिम फकीर, जिसमें वही है फकीर है। हाँ तो वो योगी है, मुस्लिम भी योगी हो सकता है, मुस्लिम है।
सबका मालिक है, वो भी यही कहते हैं सबका मालिक है
एक है, वो है कृष्णा। वो कहते हैं सबका मालिक एक और वो मैं, हम कहते हैं सबका मालिक एक वो कृष्ण। और कोई सवाल? यस।
राजा रानी ने और कृष्ण भगवान ने शादी क्यों नहीं की?
शादी क्यों नहीं की? क्योंकि शादी हो चुकी थी। कब हुई? अनादि काल से, जब से पैदा हुई राधा रानी तब से शादी हुई थी। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम में इसकी शादी, शादी मतलब संलग्न जुड़ना, शादी मतलब जुड़ना, तो कभी सेपरेट थे ही नहीं, तो शादी कैसे?
भगवत प्राप्ति के अंतिम दो चरण कौन से?
भगवत प्राप्ति के अंतिम दो चरण क्या है? भाव और प्रेम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण भगवान की।